आज है 5 मार्च, दिन शनिवार। स्वागत है आपका इंडिया बोल में, मैं हूँ सुशीला सिंह। करीब 70 की दहलीज पर पहुंच रहे भारत में महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं? परंपराओं और रीति रिवाज वाले भारतीय समाज से कितना बाहर निकल पाई हैं औरतें? औरतों के लिए बराबरी के क्या मायने हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये सांकेतिक है या वाकई इससे बदलाव आया है? इंडिया बोल में इसी मुद्दे पर होगी बहस। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर। इंडिया बोल शुरू करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर बरसे। एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जेएनयू कैंपस में गए उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी अगर देश विरोधी नारों से सहमत हैं तो इस पर कांग्रेस अध्यक्ष को अपना रुख साफ करना चाहिए। अमित शाह वृंदावन में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।
अब चल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरी बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये नारे लग रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष वहां जाकर कहते हैं इनको सुनना चाहिए, इनको बोलने देना चाहिए, इनको अभिव्यक्ति की आजादी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस नारों को अगर अभिव्यक्ति की आजादी मानते हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्टता करनी चाहिए कि वो इनके साथ सहमत है या नहीं।
तुर्की के इस्तांबुल शहर में देश के सबसे बड़े अखबार जमन को सरकार के नियंत्रण में लिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया है। शुक्रवार को एक अदालत ने विपक्ष के अखबार जमन को सरकार के अधीन करने का फैसला सुनाया था और पुलिस ने विपक्ष के अखबार के दफ्तर पर छापे भी मारे थे। अखबार के दफ्तर में सरकारी अधिकारियों के साथ हथियारबंद सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। अपने आखिरी संस्करण में अखबार ने लिखा है कि ये तुर्की में प्रेस की आजादी के इतिहास में काले दिन है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार के साथ शांति वार्ता में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। तालिबान ने कहा है कि वो तब तक शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा जब तक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक बल तालिबान के ठिकानों पर हमले नहीं रोकते और अफगानिस्तान नहीं छोड़ते। अफगानिस्तान सरकार ने शांति प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए इस्लामी लड़ाकों के साथ पाकिस्तान में अगले हफ्ते एक बैठक बुलाई है। तालिबान का कहना है कि एक तरफ शांति प्रक्रिया के लिए उसे बढ़ावा दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ अमरीका ने उसके खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। तालिबान कैदियों को रिहा करने और संयुक्त राष्ट्र की ब्लैक लिस्ट से उसका नाम हटाने की शर्त पर भी कायम है। अमेरिका के 5 राज्यों में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों का चुनाव होगा। रिपब्लिकन पार्टी में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी में बढ़त हासिल कर चुकी हिलरी क्लिंटन आज के चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए जोर लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लुइसियाना, कैंसास, केंटुकी और मेन में सफलता की उम्मीद है। हिलरी क्लिंटन लुइसियाना, कैंसास और नेब्रास्का में बढ़त हासिल करने की उम्मीद कर रही हैं। चुनाव सर्वेक्षणों के मुताबिक लुइसियाना में अफ्रीकी अमरीकी वोटरों का झुकाव हिलरी क्लिंटन की तरफ देखा जा रहा है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल। बीबीसी इंडिया बोल।
मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतनी ही खुलती गई। खुदा ने कलम रख दी और कहा औरत है, उसने ये गलत नहीं कहा। भारत में महिलाओं की एक तस्वीर जहां एक तरफ सशक्त महिलाओं में इंदिरा नूई, चंदा कोचर, मैरी क्रॉम, फ्रीडा पिंटो को दिखाती है तो दूसरी तस्वीर में वो पीड़ित महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा बलात्कार का शिकार होती हैं। कईयों को तो पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। کچھ جو عزت کے نام پر ماری جاتی ہیں۔ آزادی کے 70ویں سال کے مہانے پہ کھڑے بھارت کی مہیلاؤں کے لیے سمانتا کیا ہے، کیا وہ سشکت ہو پائی ہیں؟ انڈیا بول میں اسی مدے پر آج ہوگی بحث۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی میں جینڈر اور ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کی پروفیسر سویتا سنگھ ہیں، سواگت ہے آپ کا اور شروتاؤں کا بھی۔ اور کارکرم کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے شروتاؤں سے اور جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا اس پورے مدے پر۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟
میں باڑمیر سے پٹھان خان گجو۔
جی بتائیے گجو جی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے وشے جان لیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہیلاؤں کو سمانتا سے دیکھا جاتا ہے، انہیں پورے ادھیکار مل پائے ہیں؟ ابھی
نہیں مل پائے ہیں، کیونکہ ابھی تک کچھ مہیلاؤں کو مل پایا نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہمارے یہاں تو مہیلاؤں گھونٹے میں رہ رہی ہیں۔
جی
ایسا ہے کہ جو پروش ہے ان کو بدلاؤ لانا چاہیے، کیونکہ اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے مہیلاؤں کو۔
جی اگر آپ ہی سے شروعات کریں گجو جی، آپ کے گھر میں مہیلائیں کس طرح سے رہتی ہیں؟ کیا وہ پردے میں رہتی ہیں؟ کیا وہ کھل کر اپنی بات رکھ پاتی ہیں؟ آپ سنتے ہیں ان کی باتیں؟
جی ہاں۔
آپ لگتا ہے کہ آپ ان کو برابر سمجھتے ہیں؟
برابر۔
کس طرح سے برابر سمجھتے ہیں ہمیں بتائیے۔
ہر بات میں برابر ہے، مہیلا تو برابر ہونی چاہیے، ہم کو ماں نے جنم دیا ہے، اس ہماری بیٹی ہے، اس کو برابری پر رکھنا چاہیے۔
جی اور آپ کی بیٹی
کے سوا ہم کہاں سے آئے؟ مہیلا تو تھی جب ہم پروش پیدا ہوئے ہیں۔
تو آپ کی بیٹی اسکول جاتی ہے؟
جی بیٹی میری چھوٹی ہے، ابھی اسکول نہیں جا سکتی، چھوٹی ہے، 2 سال کی ہے۔
اچھا اسے اسکول بھیجیں گے آپ؟
میرے بیٹی اور بیٹا دو، لیکن بیٹی کو میں پرتھم رکھتا ہوں، بیٹے کو بعد میں۔
اچھا بیٹی کو آگے رکھتے ہیں۔ اور آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کا کیا نظریہ رہتا ہے مہیلاؤں کو لے کر؟
میں تو سبھی کو کہتا ہوں اچھی نظر سے مہیلاؤں کو دیکھنا چاہیے، بری نظر سے نہ دیکھنا، آپ کی ماں ہے، آپ کی بیٹی ہے، اندر سے دیکھو۔
جی تو آپ برابری میں وشواس رکھتے ہیں، بہت بہت دھنیواد اپنی بات رکھنے کے لیے۔ دوسرے کالر کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون شروتا جڑے ہوئے ہیں۔ جی اپنا نام بتائیں۔
جی دگوجے سنگھ بول رہا ہوں۔
میں آپ کا نام نہیں جان پائی، دوبارہ بولیے گا۔
دگوجے سنگھ بول رہا ہوں۔
جی دگوجے جی بتائیے۔ جی آپ نے گجو صاحب کی بات سنی جو راجستھان سے ہمارے ساتھ جڑے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مہیلاؤں کو وہ سمانتا کا درجہ مل پایا ہے بھارت میں؟
جی
کیسے؟
جی کچھ مل پایا ہے، کچھ نہیں۔
کس طرح سے بتائیے؟
جی جس طرح سے جو اپنے راجستھان کے لگ بھگ جو پچھڑا علاقہ ہے وہاں پر مہیلا کو راجنیتی میں آگے نہیں آنے دیا جاتا ہے۔ جی جو اپنے سرپنچ کے چناؤ ہوتے ہیں اس میں مہیلاؤں کی جگہ پرش کام کرتے ہیں، ان کے پتی
مطلب کہ انہیں سرپنچ بنا دیا جاتا ہے لیکن پیچھے سے وہی کام کرتے ہیں، پتی ہی کام کرتے ہیں، نرنے جو ہوتا ہے وہ جو ان کے پتی ہیں وہی لیتے ہیں فیصلہ،
لیتے ہیں۔
جو آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی اس میں بدلاؤ لانے کی، کیا آپ نے بات کی مہیلاؤں سے، ان کے پتیوں سے؟
جی بات سر میڈم جی کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، لیکن یہاں پر ہمارے میں کیا سرپنچ مہیلا کو بنا دیا جاتا ہے اور کام کورس کرتے ہیں، اس طرح سرکار کو یہ جان
لیکن میں یہاں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے اس پرشن کا اتر دینے کے بارے میں کیسے سوچا، ابھی کون سی ایسی بات تھی جس نے آپ کو یہ پریرنا دی کہ آپ اس سوال کا اتر دیں یا اس میں آپ شامل ہوں؟
جی دگوجے جی جی آپ سے ہماری جو گیسٹ ہیں وہ پوچھ رہی ہیں، پروفیسر سویتا سنگھ وہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ آپ کو اس سوال کا جواب دینا چاہیے؟
جی یہاں پر میں گرام سیوک ہے، وہ بھی میں نے ان کی جگہ پتی کام کرے ہیں، میں نے یہ 2-3 جگہ دیکھا ہے، میں جو آپ کا یہ میں نے سنا مہیلوں کے بارے میں بحث ہے، میں اس مدعے کو اٹھاؤں، آگے پہنچاؤں آپ کے دوبارہ۔
جی آپ پہنچائیں گے اس مدعے کو۔ آپ نے ابھی 2 شروتاؤں کی رائے سنی سویتا جی، اور دونوں پرشوں نے مانا کہ سمانتا تو ملنی چاہیے، لیکن یہاں سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمانتا ہے کیا؟ کیا پرش کو کے برابر ہونا اسے کہیں گے، یا اپنا چناؤ وہ کر سکیں، انہیں پورے اوسر مل سکیں، کسے کہیں گی؟
یہ بہت اچھی بات ہے کہ سمانتا کا ارتھ اتنا سیدھا سادھا نہیں ہے، جیسے کہ پرش اور استری کے بیچ جو فرق ہے، لینگک فرق ہے، ساماجک فرق ہے، تو کون سا فرق ایسا ہے جو ان کو بےحال کرتا ہے، کون سا فرق ایسا ہے جو ان کو پوری طرح سے اسمان بناتا ہے جس کی وجہ سے ہنسا پیدا ہوتی ہے، اور کون سا ایسا فرق ہے جو کہ اچھا ہے، ہے نا؟ تو 2 طرح سے سمانتا پہ بات کی جاتی ہے، ایکوالٹی سمانتا جو بہت ہی فیکچوئل قسم کی ہوتی ہے، تتھیاتمک، اور دوسری ہے جو کہ بھنتا پر آدھارت ہوتی ہے۔ پرش اور استری फ़र्क उनमें हो सकता है, किसी में कोई गुण है किसी में कोई गुण है, और उन दोनों गुणों का मिलना जुलना भी बहुत ज़रूरी होता है समाज के सम्यक विकास के लिए. लेकिन जिस समानता की हम बात कर रहे हैं वो तो कुछ परिभाषित भी है. जैसे कि हमारा जो संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं जो सबको मिले हुए हैं, तो वो सारे अधिकार लिबर्टीज़ हैं यानी कि स्वतंत्रताएँ हैं, वो स्वतंत्रताएं उनको भी मिलनी चाहिए. न्याय की अवधारणा है, उस न्याय की अवधारणा के अंतर्गत सभी लोग बराबर हैं. तो कहने का मतलब ये है कि अवसर की समानता के अलावा जो उस काम करने की हो, स्कूल जाने की हो, शिक्षा प्राप्त करने, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं जिसको हम फ्रीडम्स कहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है समानता में, उसको ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए. तो यहाँ पर यही है कि बिल्कुल ही रोबो की तरह मशीन की तरह समान होना समानता नहीं है. सामाजिक स्तर पे जो भिन्नताएं हैं उन सबको मिला करके एक जिसको कहते हैं फेयर किस्म की स्थिति बननी चाहिए, जिसमें दोनों ही अपने स्वभाव के हिसाब से अपना जीवन जी सकें और आपस में उन दोनों का संबंध ऐसा हो कि उसमें हिंसा पैदा ना हो.
तो क्या वो मिल पाई है महिलाओं को?
नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो भिन्नताएँ हैं उनको इस कदर से रूढ़ बना दिया गया है कि उसमें वो कैद हो गई हैं स्त्रियां. जेंडर रोल जिसको कहा जाता है कि आपका काम है खाना बनाना, आपका काम है बच्चों को देखना, झाड़ू पोछा करना, घरेलू काम करना, उसको पुरुष उस काम में ज़रा भी हाथ नहीं बटाएगा वगैरह वगैरह. अगर आप आंकड़े देखें तो 90% से ज़्यादा पुरुष घर का काम नहीं करते इस देश में
जी, है ना? और अभी भी अगर देखा जाए कि अभी बोला जाता है कि 21वीं शताब्दी में है, उस समय के ज़माने में और अभी 21वीं शताब्दी में कुछ बदलाव देखती हैं आप?
बदलाव अपने हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर कहें तो बदलाव इस अर्थ में है कि जो हमारी विरासत है, हमारी स्वतंत्रता की विरासत है जिसके ज़रिए ये देश परतंत्र से स्वतंत्र बना, तो उसमें जो एक अच्छी चीज़ हुई कि औरतों को शिक्षा मिले, इसकी एक सहमति बनी. हमारी जो भारतीय पितृसत्ता है उसने इस चीज़ को माना कि परिवार में बेटा और बेटी दोनों को शिक्षित किया जाना चाहिए. लेकिन फिर भी फ़र्क ये बनाए रखा गया कि किस तरह की शिक्षा लड़की को मिलेगी और किस तरह की शिक्षा लड़के को मिलेगी. तो ये जो असमानता है, जितनी भी कमाऊ नौकरियां हैं, कमाऊ प्रोफेशंस हैं, उसमें सब पुरुष जाते हैं. इंजीनियरिंग है, साइंस है, यू नो कंप्यूटर्स में तो अब खैर स्त्रियां भी आने लगी हैं लड़कियां, लेकिन जितने भी इस तरह की पढ़ाई लिखाई थी जिसमें पैसा लगता हो, इन्वेस्टमेंट होता, वो परिवार अपने बेटों के लिए करते हैं. और जो मामूली पढ़ाइयां हैं, जनरल एजुकेशन, ग्रेजुएशन कर जाओ अच्छी बीवी बनने के लिए, अच्छा घर चलाने के लिए, तो उस तरह से लड़कियों के लिए. लेकिन जो फ़र्क आया है वो ये कि अब लगभग हर क्षेत्र में लड़कियां उतने ही जा रही हैं पढ़ाई लिखाई करने जितने पुरुष, बल्कि वो उनसे बेहतर ही कर रही हैं.
अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़ चुके हैं. जी, अपना नाम कहिए.
मैं चंदन कुमार शाह करमानपुर गांव से, देहात एरिया से, बलिया जिले के उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ.
जी चंदनपुर जी, आपने बहुत लंबा ब्यौरा दिया है अपना. हमारे साथ प्रोफेसर सविता सिंह जी भी हैं, सारा विषय आप जानते हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे.
हाँ जी मैम, मैं देहात एरिया से बोल रहा हूँ. यहाँ पर भी जो महिलाओं की स्थिति है धीरे धीरे बदल रही है, और यहाँ पे शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बदल रहा है, जिससे कि यहाँ की महिलाएं भी पुरुषों से बराबरी पर चलने की कोशिश में लगी हैं, लेकिन उतना नहीं है जितना कि हम अपेक्षा करें, लेकिन धीरे धीरे ये हो रहा है. ठीक है,
किस तरह का बदलाव देख रहे हैं आप?
जैसे कि यहाँ पे पहले ग्रेजुएशन नहीं करती थी लड़कियाँ, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी ग्रेजुएशन, पहले तो 7वीं 8वीं तक ही पढ़ते थे, लेकिन अब यहाँ पर भी 10-12 और ग्रेजुएशन तक भी पढ़ रही हैं. ठीक है
जी. और आपको लगता है कि जो माँ बाप होते हैं वो बेटी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे, कि हाँ वो आगे भी पढ़े? जैसे कि प्रोफेसर सविता जी कह रही थी कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर और इन सारे जो पेशे होते हैं जिसमें पैसा लगाया जाता है, वो सिर्फ लड़कों के लिए लगाया जाता है. आपने देखा है कि ये बदलाव आया है मानसिकता में वहाँ पर?
हाँ जी मैम, यहाँ पर भी आया और बाहर भी भेज रहे हैं, शहरों में जाकर इंजीनियर और इंजीनियर बन भी रही हैं, डॉक्टर भी बन रही हैं यहाँ की भी लड़कियाँ. धीरे धीरे ये हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तेजी नहीं है यहाँ पर भी.
जी धीरे धीरे बदलाव हो रहा है. अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं.
हेलो
जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
जी मेरा नाम रोहित कौरव है, मैं नरसिंहपुर जिले से मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ.
जी रोहित जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप?
ये आपके पैनल में बहुत अच्छी बात कर रही थी शिक्षा से संबंधित, तो मेरा इसी विषय पर कहना है कि महिलाओं को और बच्चियों को जो शिक्षा है वो उतनी सही नहीं दी जा रही है। आज के समय में ग्रामीण परिवेश में लोग ऐसा विचार करते हैं कि शिक्षा से अच्छा अच्छे से विवाह करेंगे, विवाह पर इतना ज्यादा खर्च करने लगे हैं और उसमें अपना मतलब सामाजिक वैभव और विलासिता दिखाने लगे हैं, तो उनका मतलब ये रहता है कि शिक्षा पे खर्च करना बेकार है और विवाह पे खर्च करेंगे जिससे उनकी सामाजिकता में वृद्धि होगी और एक ठसक मतलब झूठी मतलब ठसक उनकी बन जाएगी समाज
जी,
में।
ऐसा क्यों है हमारे समाज में रोहित जी, ऐसा क्यों है हमारे समाज में, आपसे जानना चाहेंगे।
ऐसा एक कुरीति बन गई है जब अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि को मतलब ऊंचा दिखाने के लिए, एक नकली वो बताने के लिए, व्यवहार बताने के लिए लोगों में एक भ्रांति बन गई है, इसको मिटाना होगा। अच्छा, दूसरा इसका एक पहलू, महिलाएं स्वयं भी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाएं अभी भी लड़के को ज्यादा प्राथमिकता दे रही हैं। यहाँ पर अगर किसी के यहाँ एक लड़की है या दो लड़की हैं तो उस पर ये फोर्स किया जाता है कि अब तुम्हारे यहाँ लड़का होना चाहिए, एक लड़का तो बहुत जरूरी है। अब ये क्यों जरूरी है, इसका क्या कारण है, ये तो वो बड़े जांच का विषय है, इसमें बहुत विचार करना पड़ेगा।
नहीं, आपको क्या लगता है कि क्यों ये कहा जाता है कि लड़कियां हैं अब लड़का जरूरी है, आप भी तो उसी समाज के भाग हैं।
जी जी, ये मेंटेलिटी बन गई है मैडम, ये मैं भी उनसे पूछता हूँ क्या जरूरी क्यों है, आप ये आप ऐसा क्यों कह रही हो, क्या क्या लड़कियाँ कौन सा काम नहीं कर सकती, लड़का कौन सा काम अलग से कर सकता
जी, सविता जी, बारे में उनका जी, रोहित जी यहाँ पर सविता जी आपका जवाब देना चाहती है।
देखिए, इसमें बहुत गहरा विश्लेषण है कि ऐसा क्यों। एक तो पहली बात कि शादी पर वो जो खर्च करना चाहते हैं वो इसलिए क्योंकि वो उसके व्यक्तिगत विकास में उनका उनकी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि वो उसको कमतर मनुष्य मानते हैं। शादी एक तरह से उनके लिए जिम्मेदारी से हाथ धो लेने जैसी बात होती है, दूसरे परिवार में भेज दिया, परिवार ठीक ठाक होना चाहिए, परिवार का रिश्ता परिवार से है, व्यक्ति का रिश्ता व्यक्ति से नहीं है, ऐसा इस समाज में है। तो एक तो बात यह है कि ये भी इसी बात का रिफ्लेक्शन है कि उसको बहुत सीरियसली गंभीरता से स्त्री के जीवन को नहीं लिया जाता। और दूसरी बात कि बेटे की जो ख्वाहिश है उसमें बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारी व्यवस्था है उसमें जो बेटा है वो धन संपत्ति का अधिकार पाता है और लड़कियां नहीं पाती हैं, तो इसलिए लोग अपने संतति को चलाने के लिए, क्योंकि संपत्ति के ही ट्रांसफ़र से वो जो है वो चलती है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हर परिवार चाहता है। इसीलिए जो आजकल चिंतन करने वाली स्त्रियां हैं वो ये कह रही हैं कि संपत्ति का अधिकार बराबर होना चाहिए, और हमने उसमें कानून में सुधार भी किया है और उसको कार्यान्वित किया जाना चाहिए। जब तक स्त्री को उस तरह से, लड़कियों को उस तरह से सशक्त नहीं बनाया जाएगा, उनके साथ तरह तरह की इसी तरह की दुर्भावना, इसी तरह की असमानता प्रैक्टिस की जाती रहे
जी। इसी से जुड़ा एक और बहुत मुख्य मुद्दा जो है वो है उपभोक्तावाद का। इस दौर में चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों को एक कमोडिटी की तरफ की तरह देखा जाता है, वस्तु की तरह देखा जाता है, और ख़ास तौर पर महिलाओं को, तो चाहे वो विज्ञापन उदाहरण हो सकते हैं, आज की फिल्में हो सकती हैं कई तरह से, या वीडियोज़ हो सकते हैं। ऐसे में इन महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? ये पूरी मानसिकता है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, सिर्फ पुरुष को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
मानसिकता को सुधारने जैसी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि जो व्यवस्था उनको कमोडिफाई करती है, उनको वस्तु बनाती है, वो है विश्व पूंजी, और वो बहुत सशक्त चीज़ है, बहुत ज़्यादा मजबूत चीज़ है। जैसे कि आप किसी चीज़ को बेचने के लिए जो चीज़ें वो पैदा करते हैं, फ़ोन पैदा करते हैं, टेलीविज़न पैदा करते हैं, फ्रिज, गाड़ियाँ वगैरह वगैरह, तो उनको बेचने के लिए उनको एक मदद की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मददगार होती है वो है फीमेल सेक्सुअलिटी, यानी कि स्त्री का शरीर, उसकी लैंगिकता। तो इसलिए स्त्रियों का कमोडिफिकेशन, उनके बॉडी का कमोडिफिकेशन बहुत गहराई से हुआ है और एक बहुत बड़ी साजिश है। नहीं तो ये मानने सोचने की बात है कि जब कोई लड़की गाड़ी चलाती नहीं है, उसके पास, ज़्यादातर लड़कियों के पास गाड़ियाँ नहीं हैं, तो वो गाड़ी का विज्ञापन क्यों करती है? जब वो ब्लेड से शेव नहीं करती है तो वो ब्लेड का विज्ञापन क्यों करती है? तो कहने का मतलब है कि एक बहुत ही इनडायरेक्ट ढंग से उसकी सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल किया जाता है, उसके शरीर को बेचा जाता है उन वस्तुओं के साथ, तभी वो कमोडिटी जो है वो मार्केट में एक मुनाफा ایک خاص قسم کا منافع پیدا کر پاتی ہے. تو ہم سدھار کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو پونجی وادی ویوستھا ہے اس پونجی وادی ویوستھا کا ورودھ کریں, اس کو ہم ٹھیک سے انالائز کریں اور ہم ایک بہتر زیادہ منشیہ پرک ویوستھا کی مانگ کریں جس میں شریر کے کموڈیفیکیشن کی ضرورت نہیں پڑے, ہے نا, اس کے شریر کا کو الاس سے اس کو پریم سے اس کے ساتھ ویوہار کیا جانا چاہیے, نہ کہ اس کو بیچنے کے لیے
بیچنے کی کوشش کی جانی چاہیے. جی دیکھتے ہیں اگلے کالر, ہمارے کالر کون جڑے ہیں ہمارے ساتھ. جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی
ہلو,
جی کہاں سے بول رہے ہیں؟
ہاں آداب میڈم, میں دلاور حسن قادری بول رہا ہوں جیسلمیر راجستھان.
جی دلاور صاحب بتائیے آپ کیا کہنا چاہیں گے. سویتا جی ہمارے ساتھ ہیں, پورا وشے جان رہے ہیں, ہماری بحث ہو رہی ہے اس مدعے پر.
ہاں میڈم میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے خواتینوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں.
جی کیا کہہ رہے ہیں؟
یہ تو میں نے شعر پڑھا تھا, کوئی عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے خواتینوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. آج کا وشے جو یہ ہے مہیلاؤں کا ادھیکار, مہیلاؤں کو جو سمانتا, مہیلاؤں کو ابھی اپنا حق نہیں ملا ہے میڈم, اس کے لیے مہیلائیں بھی دوشی ہے اور پروش بھی دوشی ہے.
کیوں ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو کہ مہیلائیں؟
جہاں تک ہمارے ہندوستان کا سوال ہے میڈم, ہندوستان کی دھرتی ہے تو سب سے پہلا ادھارن پولیٹیکل کا لے, ہماری سنسد میں آج بھی 12% مہیلائیں. اس سے اچھا جو پڑوسی دیش ہمارا پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, جنہیں روڑھی وادی مانا جاتا ہے, ان میں ہمارے سے زیادہ سنکھیا وہاں پر. تو یہ بڑے غور و فکر کا مقام ہے, پروش بھی دوسری ہے اور مہیلا بھی. جہاں تک میرا بچار تو اس کے لیے 50% ریزرو سیٹیں کرنی چاہیے, چاہے سنسد ہو, چاہے اسکول ہو, چاہے کھیل کا میدان ہو, چاہے دوسری جگہ ہو, چاہے کوئی بھی سنستھان ہو, اگر 50% سیٹیں ریزرو مہیلاؤں کے لیے ہوگی تو نشچت روپ سے مہیلاؤں کی بھاگیداری بھی تھوڑے دنوں پروشوں کے برابر دیکھنے کو ملے.
جی دلاور صاحب اپنی بات رکھنے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. سویتا جی یہاں پر راجنیتی کی بات ہو رہی ہے اور 19 سالوں سے مہیلا آرکشن بل جو ہے لمبت ہے, راجیہ سبھا میں تو پاس ہو گیا لیکن لوک سبھا میں ابھی پارت نہیں ہوا ہے. اور اگر آج کی بات کی جائے تو اپ راشٹرپتی حامد انصاری نے بھی کہا ہے کہ اس کو پاس ہونا چاہیے. کیا کارن ہے؟ کیا آرکشن کی واقعی ضرورت ہے؟ پہلے یہ بھی ایک سوال ہے اس میں.
نہیں, آرکشن کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ہمارا سماج جس طرح سے سنرچت ہے اس میں اسمانتا ٹوٹلی اسٹرکچرڈ ہے. اس لیے اس سے آپ کسی کو یہ کہے کہ ہم اپنے ایٹیچیوڈ کو بدل دیں اس سے یہ چیزیں ہو جائیں گی تو یہ نہیں ہونے والا ہے. ایٹیچیوڈ کوئی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ جو پالیٹکس ہے وہ ہیومن انٹرسٹ پہ بیسڈ ہوتا ہے نا. ہیومن انٹرسٹ کلاس بیسڈ ہو سکتا ہے, ورگ آدھارت انٹرسٹ ہو سکتا ہے, جاتی آدھارت ہو سکتا ہے. تو ہمارے یہاں جو یہ مشکل پیش آئی ہے اس کا کارن بھی یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو پچھڑوں کی راجنیتی چل رہی, پچھڑی جاتیوں کی راجنیتی جو ہے وہ اس کے آڑے آ گئی ہے. ابھی یہ پورے دیش کو طے کرنا پڑے گا کہ پچھڑی جاتی زیادہ جلدی اس کا سمادھان ہونا چاہیے یا دمت استری, یہ ایک مدعا ہے. تو میرا تو ماننا ہے اور بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جو بیکورڈ کاسٹ نے اس بل کو روکا بیسیکلی, تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ مہیلاؤں کو نہیں آنے آگے دیں گے تو یہ سماج زیادہ سے زیادہ ہنسا, زیادہ سے زیادہ اسمانتا کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور ہوتا جائے گا. اور ہماری جو وکاس کی جو پوری منشا ہے اور پدھتی ہے وہ بھی اس سے افیکٹڈ ہو رہی ہے کیونکہ اگر آپ مہیلاؤں کو نہیں دیں گے ڈسیزن میکنگ میں حصے داری تو اس طرح کی پالیسیز نہیں بنیں گی.
جی آپ ڈیسیجن میکنگ کی بات کر رہی ہیں, میں پہلے کالر کی طرف ایک بڑھتی ہوں, اس کے بعد آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گی. دیکھتے ہیں کالر کون ہے ہمارے ساتھ اگلے. جی اپنا نام بتائیے.
ہلو
جی کہاں سے بول رہے ہیں؟
جی میں بھیشم پال سنگھ اتر پردیش کے.
جی بھیشم پال جی بتائیے آپ سن رہے تھے, یہ مہیلا آرکشن بل کی بات ہو رہی تھی, مہیلا کو آرکشن دینے کی بات ہو رہی تھی, کیا کہنا ہے آپ کا اس پر, کیا انہیں دیا جانا چاہیے؟
جی نشچت روپ سے دیا جانا چاہیے. اور سب سے پہلے میں اپنی بات یہاں سے شروع کروں گا
جی
کہ ہماری پتر ستاتمک سماج میں جسے پرش پردھان سماج کہتے ہیں اس میں ناری کو دوئم درجے کی ناگرک بنا کے رکھ دیا گیا اور ناری کی سنگیا ہمیشہ کاتر ہرنی سے کی گئی. لیکن مجھے خوشی ہے کہ آج بی بی سی کے اسٹوڈیو میں دو کاتر ہرنی نہیں تو سنگھ ہیں, سشیلا سنگھ جی, سجتا سنگھ جی.
جی جی اپنی بات رکھیے.
کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ ہمارا جو سماج ہے اس میں ویچارک روپ سے چاہے ہم کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے رہے ہوں لیکن ویوہارک روپ سے ہم نے ناریوں کے ساتھ کبھی نیائے نہیں کیا. اور یہاں تک کہ جو ہمارے سماج کے ماندنڈ تھے چاہے وہ مریادا پرسوتم رہے ہوں, چاہے دھرم راج رہے ہوں, چاہے ستیہ وادی رہے ہوں, लेकिन उन्होंने भी नारी को पूरा न्याय नहीं दिया।
क्या कारण, क्या देखते हैं इसका, क्यों नहीं न्याय मिला महिलाओं को, अगर आपका ये कहना है तो? जी
हाँ जी जी जी, कारण मैं कारण पे आना चाहता हूँ। कारण ये रहा कि अशिक्षा, अज्ञानता और समाज की कुरीतियां, समाज का एक बंद खोल में बंद होना।
तो अभी तो शिक्षा का स्तर अभी तो बहुत बेहतर हुआ है भारत में।
मेरा तो ये भी मानना है कि जो पितृसत्ता का उद्गम है वहाँ पर, ये बात बहुत, अब तो खैर बहुत ठीक से उसका रिसर्च हो गई ये बात कि पुरुषों को स्त्रियों की शक्ति से बहुत ज़्यादा भय पैदा हुआ, जिसका कारण था कि उन्होंने ऐसी एक संरचना बनाई जिसमें वो संरचना ही स्त्री को दमित करे। यू नो, इंडिविजुअल जो है, व्यक्तिगत रूप से कोई पुरुष अकेले स्त्री को नहीं दमित कर सकता, सारी स्त्रियों को, इसलिए एक पूरी संरचना बनी। और इसीलिए इस संरचना पर ही हम लोग ज़्यादा चोट करते हैं, ना कि किसी व्यक्तिगत किसी व्यक्ति पर या किसी समूह पर या किसी परिवार पर। तो ये मानना चाहिए लोगों को कि स्त्रियों के अंदर अपार शक्ति है, और उस शक्ति का अगर इस्तेमाल देश नहीं करता, समाज नहीं करता, हमारी आर्थिक व्यवस्था अगर उसका लाभ नहीं उठाती है, तो पिछड़ी ही रहेगी।
भीष्मपाल जी, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस लौटती हूँ आरक्षण के मुद्दे पर। अगर पंचायती राज संस्थानों की बात की जाए तो वहाँ 33% आरक्षण है, और अभी आज ही जो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, उनका कहना था कि 50% किया जाना चाहिए। एक श्रोता की भी आपने बात सुनी थी, उनका कहना था कि पति निर्णय लेते हैं। आपको लगता है कि कुछ बदलाव आया है महिलाओं को, इतने निचले स्तर से जो है आरक्षण दिया जा रहा है?
निश्चित तौर पे, मैं उस तरह के लोगों में से नहीं हूँ जो टोटली स्केप्टिकल हो, जिनको लगे कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारी स्त्रियों का सशक्तिकरण हुआ है, बल्कि हमारे पास तो डेटा ये है कि पिछले 20 वर्षों में जहाँ जहाँ महिला सरपंच चुनी गई हैं और उनको काम करने का मौका मिला है, वहाँ पर विकास ज़्यादा हुआ है। और इस तरह का विकास हुआ है जो लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, जैसे सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, इसमें उन लोगों ने बहुत रुचि ली है और आगे बढ़ के काम किया है। राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी, तो और साउथ के स्टेट्स में आप पाएंगे कि उनका बहुत ही सुंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो मेरा ये कहना है कि चाहे शुरुआत में पुरुष अपने को सरपंच, पति या जो भी कह रहे हों, ये समय भी गुजर जाएगा और उनके दिन इस तरह से लदने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे स्त्रियों के अंदर ये विकास और कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि वो काम कर सकती हैं, तो वो बहुत आसानी से उनको दरकिनार करती जाएंगी।
और वो विश्वास आ रहा है,
बिल्कुल आ रहा है। इसीलिए हम ये भी मानते हैं कि पार्लियामेंट में, संसद में स्त्रियाँ अगर 33% क्यों रिजर्वेशन मांगा गया, ये आंकड़ा क्यों, इसलिए क्योंकि उतना परसेंट चाहिए किसी भी बिल को लॉ बनाने के लिए, ठीक है ना। तो अगर कोई, अगर स्त्री के फेवर में कोई लॉ बनना है तो उसको, उसके पास होने की गारंटी ये है कि 33%
होना चाहिए जी, ना जी, क्योंकि हम कार्यक्रम के अंत में पहुंच रहे हैं।
लेकिन वो 50% हो ही जाएंगी।
बिल्कुल जी, कार्यक्रम के अंत में पहुंच रहे हैं। अंतिम टिप्पणी चाहूंगी आपसे कि आप जानते हैं 8 मार्च को महिला दिवस है, आपको क्या लगता है कि समाज में जो है बदलाव आया है, और अगर नहीं आया तो अब क्या किया जाना चाहिए? बहुत ही संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगी।
समाज में बदलाव निश्चित तौर पर आया है, और बहुत और कुछ किए जाने की आवश्यकता है जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि संविधान को बहुत सीरियसली, गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, फंडामेंटल राइट्स को, हिंसा को कम करने की आवश्यकता है, स्त्रियों की जो उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनको पहचानने, उनको स्वीकारने की आवश्यकता है, और उनको आगे रास्ता देने की ज़रूरत है। वो किसी पर आश्रित नहीं है, किसी से मोहताज नहीं है, वो भी मनुष्य हैं और इस देश की नागरिक हैं, और उनके जो भी अधिकार हैं उनको मिलने चाहिए।
जी, तो महिलाओं को रास्ता देने की ज़रूरत है, ये कहना है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में जेंडर और डेवलपमेंट स्टडीज़ की प्रोफेसर सविता सिंह का। इंडिया बोल में शामिल होने के लिए हमारे साथ तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर बरसे। अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी अगर देश विरोधी नारों से सहमत हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष को अपना रुख साफ करना चाहिए। तुर्की के इस्तांबुल शहर में देश के सबसे बड़े अखबार जमन को सरकार के नियंत्रण में लिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया है। तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार के साथ शांति वार्ता में हिस्सा लेने से इनकार किया है। तालिबान ने कहा है कि जब तक शांति वार्ता में तब तक शामिल नहीं होगा जब तक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक बल तालिबान के ठिकानों पर हमले नहीं रोकते। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ इंडिया बोल में बस इतना ही। तकनीकी सहयोगी दीपक जसरोटिया के साथ मुझे दीजिए अनुमति। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।